ॐ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। यत्कीर्तनं यत् अस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भायवनाः खसादयः यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवीष्णवे नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमृषपुरुषः भोक्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ஸ்ரீமத் பாகவதம் அஷ்டம் ஸ்கந்த் அத்யாய் 2 சிரிஷக் கஜேந்திர கா சங்கட் ஸ்லோக் சங்கியா 31 இத்தம் கஜேந்திர ச யதாப சங்கடம் பிரணஸ்ய தேஹி திவசோ யத்ரிக்ஷயா அபாரயன் அபாரயன் ஆத்மவிமோக்ஷணே சிராம் தத்யௌ இமாம் புத்திம் அத அப்யபத்யத் அப்யபத்யத ஈதம் கஜேந்திர ச யதாப சங்கடம் ஈதம் கஜேந்திர ச யதாப சங்கடம் ப்ராணஸ்ய தேஹி விவசோ யத்ரிக்ஷயா ஆபாரயன்னாத்மவிமோக்ஷணே சிரம் ஆபாரயன்னாத்மவிமோக்ஷணே சிரம் தத்யாபிமாம் போதிமதாப்யபத்யத தத்யாபிமாம் போதிமதாப்யபத்யத ஈதம் கஜேந்திர ச யதாப சங்கடம் ப்ராணஸ்ய தேஹி விவசோ யத்ரிக்ஷயா அபாரயன்னாத்மவிமோக்ஷணே சிரம் தத்யாபிமாம் போதிமதாப்யபத்யத புனரவர்த்தி ஈதம் கஜேந்திர ச யதாப்ய சங்கடம் ईथम इस प्रकार से गज इंद्र है हाथियों के राजा स है उस यदा जब आप प्राप्त की संकटम ऐसी भयानक स्थिति प्राणस्य जीवन की देही देहधारी, विवशा है परिस्थितिवश, असहाय अदृक्षया दैवती इच्छा से, अपारयन असमर्थ होकर, आत्मविमोक्षणे अपनी रक्षा करने में, चिरम द्रिकाल तक, दध्यौ गंभीरता पूर्वक सोचने लगा, इमाम यह बुद्धिम निर्णय, अथ तत्पश्चात अभ्यपद्यता प्राप्त हुआ। त्रिपुरूपा जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य अनुवाद। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल की चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थिति वश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंततोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। पुनरावृत्ति करें। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंततोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। तात्पर्य, प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष में लगा है। प्रत्येक प्राणी अपने को संकट से बचाना चाहता है, किंतु जब वह अपने को नहीं बचा पाता और यदि वह पवित्र है तो वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 16 श्लोक में हुई है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुन आरतो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के पवित्र व्यक्ति जो संकट में हो, जिन्हें धन की आवश्यकता हो, जो ज्ञान की खोज में हो तथा जो जिज्ञासु हो, अपनी रक्षा के लिए या प्रगति करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र ने इस संकट की घड़ी में भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का निर्णय लिया। पर्याप्त विचार करने के बाद ही वह इस सही निर्णय पर पहुंचा था। ऐसा निर्णय पापी व्यक्ति नहीं ले सकता। अतएव भगवद गीता में कहा गया है कि जो पवित्र अर्थात सुकृति आत्मा है, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि संकट या विषम परिस्थिति में मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रस्तुत श्लोक में भगवान के शरण ग्रहण करने का वर्णन है। यह जो प्रसंग है, एक अस्थल प्राणी और एक जलचर प्राणी, दो प्राणियों के बीच युद्ध का वर्णन है। स्थल प्राणी उसे कहा जाता है जो धरती पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, वे स्थल प्राणी जैसे गजेंद्र, और जलचर प्राणी जो जल में रहते हैं, जल ही जिनका जीवन है, वे हैं घड़ियाल। बहुत से जलचर प्राणी हैं, मत्स्य इत्यादि। एक स्थल प्राणी और एक जलचर प्राणी, दोनों प्राणियों का यहां वर्णन है। गजेंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है गज इंद्र, गज माने हाथी, इंद्र माने राजा, हाथियों के जो राजा हों, बहुत से हाथियों का जो पति हो उन्हें गजेंद्र कहा जाता है। गजेंद्र का ऐसा वर्णन किया गया है कि वह है पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था और एक बार वो राजा राज्य छोड़ करके जंगल में तप करने के लिए चला गया। उसने गुरु नहीं चयन किया था, ऐसे ही अपने मन में इच्छा आया और चल दिया बिना गुरु के आदेश से। जब राज्य में कोई राजा न हो तो राज्य में अराजकता फैल जाती है। उसके पास का नाम था अगस्त्य, थोड़ा सा रुक जाए। एक ऋषि के अभिशाप से वो घड़ियाल, वो हाथी बना था। प्रसंग इस प्रकार से है कि क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ऊंचा तथा सुंदर पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन है, अर्थात 80,000 मील, 2 मील का एक कोस होता है। उसे क्षीर सागर के मध्य में एक त्रिकुट पर्वत था जिसमें 3 चोटियां थी, एक लोहा की, एक चांदी की और एक सोने की, और यह है चोटी आकाश एवं दिशाओं को सुंदर बनाने वाले थे। तो त्रिकुट पर्वत की घाटी में एक सुरम्य उद्यान था जिनका नाम ऋतुमत था, जिसे वरुण देव ने बनाया था। तो उस क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर था। तो एक बार हाथियों का राजा जिसे गजेंद्र कहा जाता है, वह अपने पूरे परिवार के साथ, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, वह उस सरोवर में जल विहार करने के लिए गया। उसने उस सरोवर में उस सरोवर का जल पिया, जल विहार किया, सूर्य में जल लेकर अपनी पत्नियों को ऊपर छिड़क रहा था, स्नान करा रहा था। वह विहार करने में बिल्कुल मस्त था। उसी समय उस जल में रहने वाला, सरोवर में रहने वाला एक घड़ियाल तुरंत उस हाथी के पांव को पकड़ लिया। घड़ियाल जलचर प्राणी होता है, बहुत वही बलिष्ठ होता है। ये हाथी भी बलिष्ठ था। जब वह पांव को पकड़ लिया तो गजेंद्र छुड़ाने का अभ्यास करने लगा। दोनों तरफ से खींचा खींची प्रारंभ हो गया। दोनों बलिष्ठ थे। भागवत महापुराण में वर्णन है कि 1000 वर्षों तक दोनों में खींचा खींची होता रहा, युद्ध चलता रहा 1000 वर्षों तक। उसमें न तो हाथी मरा न घड़ियाल मरा, किंतु जल में रहने से धीरे धीरे हाथी का बल कम होता गया, क्योंकि गजेंद्र जो था स्थल प्राणी था, पृथ्वी पर आने वाला था, और घड़ियाल जलचर प्राणी था, उसको भोजन मिल रहा था, वो पानी में रहने वाला था तो उसको शक्ति मिल रही थी, तो उसकी शक्ति में ह्रास नहीं हुआ, ह्रास हो गया गजेंद्र की शक्ति में, और वह खींचने लगा। और गजेंद्र के जितने भी सगे संबंधी थे वे भी पीछे से उसके पूंछ को पकड़ करके वो भी खींचने लगे। धीरे धीरे वह घड़ियाल गजेंद्र को खींचता गया, और इनके गजेंद्र की जितनी पत्नियां थी बच्चे थे ये भी लगे थे गजेंद्र को बचाने में, लेकिन फिर भी घड़ियाल गजेंद्र को खींच लिया। तो पत्नियों ने देखा, बच्चों ने देखा कि हम भी इनके साथ चली जाएंगे, हम लोग का भी जीवन नहीं बच सकता, हम लोग को भी घड़ियाल खींच लेगा, इसलिए गजेंद्र की पत्नियों ने और बच्चों ने साथ छोड़ दिया। इस प्रकार अपने को असहाय पाकर एवं अपनी रक्षा का अन्य साधन न देकर उस हाथी ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। हाथी और घड़ियाल की लड़ाई में यही अंतर है कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी प्राय स्थान अर्थात जल में था, और ये 1000 वर्ष की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति छिड़ होने लगी। और घड़ियाल को भोजन मिल रहा था इसलिए उसकी शक्ति में कमी नहीं आई, और जलचर प्राणी रहा तो उसको कोई कठिनाई नहीं हुई, और अंत में उन्होंने गजेंद्र को खींच लिया। याद रखिए, ये जीवन का अंतिम क्षण है दोनों का। घड़ियाल ने जब खींचा ग्राह को, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, मतलब निष्कर्ष यह है कि मरते समय कोई व्यक्ति किसी के साथ में नहीं जाता है, कोई पति हो चाहे पत्नी, पति मर रहा हो और पत्नी से कहे कि तुम भी मेरे साथ मर जाओ, पत्नी नहीं मर सकती, और पत्नी मर रही हो और कहे कि आप भी हमारे साथ मर दिए पति से, वो भी नहीं मर सकते, बच्चों से कहिए बच्चे भी नहीं मर सकते, शरीर को सबको मोह है, अंत में कोई साथ में नहीं जाता है, जिसके लिए आप अपने जीवन का पूरा समय लगा देते हैं, जिनको पालन पोषण करने के लिए पाप कर्म करते हैं, 2 दिन का जग में मेला क्यों भरे पाप का ठेला, जिसके लिए आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं पत्नी के लिए बच्चों के लिए, जीवन के अंत में कोई साथ में नहीं जाता है। देखिए गजेंद्र की पत्नी, गजेंद्र की पत्नियों ने बच्चों ने साथ साथ छोड़ दिया। सज धज की जिस दिन मौत की बुलावा आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। एक भजन गाया जाता है, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। घर की वस्तु घर में ही रह जाएगी, बैंक का पैसा बैंक में ही रह जाएगा, परिवार आपका रोता रह जाएगा लेकिन आपके साथ में नहीं जाएगा, केवल एक कफन जाता है बेचारा, वो भी जल जाता है। मरने के बाद में सभी आपको जलाने के लिए जाते हैं लेकिन जलते नहीं है, आपको जला करके आ जाएंगे। रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं। गजेंद्र एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब हमारी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के अलावा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया। क्यों स्मरण किया? गजेंद्र के बारे में वर्णन है कि यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था और किन्हीं कारणों से अगले जन्म में वह गजेंद्र बना। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में वह भगवत भक्ति का स्तोत्र का पाठ करता था और पाठ करने के अभ्यास से उसे भगवान का स्मरण आ गया, इसलिए उन्होंने उसे असहाय की अवस्था में भगवान को पुकारा। पत्नी और बच्चे साथ छोड़ दिए, तो पूर्व जन्म के अभ्यास से गजेंद्र को भगवान की स्मृति आई और उसने एक सरोवर से भगवान कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान को अर्पण किया और कहा, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। हे भगवान, आप समस्त कारणों के परम कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है, आप स्वयं अपने आप हैं, अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। ऐसा गजेंद्र ने कहकर भगवान को पुकारा, जिसको गजेंद्र स्तुति कहते हैं। उस संकट की स्थिति में उसने भगवान को पुकारा और भगवान उनकी पुकार को सुने और गजेंद्र की रक्षा किए। कोई भी व्यक्ति हृदय से यदि भगवान को पुकारे तो उस पुकार को भगवान सुनते हैं। भगवान वरुण पर चढ़ करके आए। वरुण जी एक बार ऐसे डैना मारते हैं तो हजारों कोश जाते हैं। भगवान तीव्र गति से चले, गजेंद्र के पास आते आते घड़ियाल ने गजेंद्र को खींच लिया, जल के अंदर कर लिया। भगवान गरुड़पट से कूद पड़े, गरुड़पट से कूद पड़े और जल में प्रवेश किए। प्रतिदिन तो भक्त भगवान का चरण पखारता है लेकिन भगवान देखिए इतनी कृपालु, इतने दयालु हैं, करुणावत्सल हैं कि जल के अंदर प्रविष्ट करके गजेंद्र का पांव पकड़ करके सीधे जल से स्थल पर कर दिए और चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाले और गजेंद्र को मुक्त कर दिए। ग्राह का भी उद्धार हो गया और गजेंद्र का भी उद्धार हो गया। गजेंद्र घड़ियाल के चक्र से छूट गया, भगवान ने उनकी रक्षा किया और जो घड़ियाल था उसको बारे में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था जो घड़ियाल बना था। एक बार वह स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, जल में विहार कर रहा था। तो जिस सरोवर में वह विहार कर रहा था उसी सरोवर में देवल नाम के ऋषि भी स्नान कर रहे थे। तो वह झट से आकर के डुबकी लगाया, वह गंधर्व पानी में से डुबकी लगाया और देवल ऋषि के पांव को खींच लिया। ये उसकी उच्छृंखलता थी, असभ्य का व्यवहार किया। पर ऋषि क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के उसे अभिशाप दे दिए, तू घड़ियाल जैसा पांव पकड़ता है इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूं, तुम अगले जन्म में घड़ियाल बन जाओ। जो हुहु नाम का गंधर्व था वह घड़ियाल के शरीर को प्राप्त हो गया। जब अभिशाप दी तो क्षमा मांगा, उसने क्षमा मांगा और क्षमा मांगे तो देखिए ब्राह्मण वास्तव में क्रोधी होते हैं, अभिशाप देते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण प्रणाम करने से यदि प्रसन्न न हो जाए तो वास्तविक ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को प्रसन्न हो जाना चाहिए, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, यही ब्राह्मण की विशेषता है। उनको दया आ गई और देवल ऋषि ने कहा कि जाओ, जब भगवान गजेंद्र का उद्धार करेंगे उसी समय तेरा उद्धार हो जाएगा, भगवान तुझे मुक्त कर देंगे। तो भगवान ने गजेंद्रग्राह का वध करके गजेंद्र को मुक्त किया। ऋषि का अभिशाप था, अभिशाप से वो घड़ियाल बना था। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या में वर्णन करते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चंगुल में फंसा हुआ है। सभी प्राणी जन्म लेते हैं, बुढ़ा होते हैं, दैहिक दैविक तापों से झुलसते हैं और अंत में मर जाते हैं। जन्म मृत्यु के घोर संकट में हम सब फंसे हुए हैं, किंतु मरते वक्त जो भगवान को पुकारता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में चार प्रकार के सुकृति लोग होते हैं। सुकृति मतलब पुण्यात्मा, और चार प्रकार के दुष्कृति लोग होते हैं, दुष्ट आत्मा, जो भगवान का शरण नहीं लेते हैं, मूढ़, नराधम, माया परितक ज्ञानी, मतलब मनोधर्मी या भ्रमित व्यक्ति, और चौथा है नास्तिक, ये कभी भगवान का शरण नहीं लेते। अहंकार विमूढ़त्मा कर्ताहमिति मन्यते, ये अहंकारी होते। और चार प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं। इस श्लोक की व्याख्या में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कौन कौन लेते हैं जो भगवान को पुकारते हैं। चार प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान को पुकारते हैं, शरण में भगवान की शरण लेते हैं, जब संकट में घिरते हैं तो भी भगवान को पुकारते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के कौन कौन से हैं? पहले हैं आर्त, जो संकट में हो, जो दुख में हो, दुख से घिरे हो। पहले भक्त आर्त होते हैं, आर्त का मतलब दुख होता है, जो शारीरिक मानसिक संताप विपत्ति शत्रु भय रोग अपमान चोर डाकू और अत्याचारियों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अधिक श्रद्धा से भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान को जो पुकारता है उसे आर्त भक्त कहते हैं। और उन जैसे गजेंद्र आर्त में है, दुख में है, क्योंकि घड़ियाल ने उसके पांव को पकड़ा है, उसको कष्ट हो रहा है, तो उसने भगवान को पुकारा, भगवान ने उनकी रक्षा की। और उदाहरण देखिए, जरासंध के बंदी, जरासंध जो बिहार का रहने वाला था, 20,000 राजाओं को बंदी बनाया था, वो शिव जी का भक्त था, बहुत बलिष्ठ था, उसकी सामना कोई नहीं कर सकता था। और बहुत बड़ा दानी था, उसके दरवाजे पर जो जाता, जिस चीज की याचना करता, उस चीज को दे देता था। भगवान भी गए थे, अर्जुन भीम और कृष्ण गए थे उनसे युद्ध की याचना करने के लिए, युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए, और युद्ध की भिक्षा मांगे कृष्ण अर्जुन और भीम, उन्होंने भीम के चयन किया, कृष्ण को नहीं चयन किया, कहा कि तुम तो भगेड़े हो, तुम युद्ध से भाग गए थे, जबकि 17 बार भगवान ने उसको खदेड़ा था। ब्राह्मणों की कृपा से एक बार भगवान उसको नहीं पकड़े, भाग गए, तो उसी को बोलता है तुम तो भगोड़ा हो, भागते हो युद्ध से, तुम मेरे साथ लड़ने लायक नहीं। अर्जुन को कहा तुम मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकते, उम्र में भी छोटे हो। भीम को चयन की, भीम लड़े उनके साथ, बहुत बड़ा वीर था ये, और दानी भी था, ब्राह्मणों को भी सम्मानित करता था। तो जरासंध है 20,000 राजाओं को बंदी बनाया था, और जब जरासंध का वध कर दिए भीम जी, तो भगवान ने 20,000 राजाओं को मुक्त किया, और वो 20,000 राजा भगवान कृष्ण के शरण में आए, और राजसूय यज्ञ में 20,000 राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया, और 20,000 राजा जिन्होंने जिनको जरासंध ने बंदी बनाया था, वे सब राजसूय यज्ञ में आकर के भाग लिए, सहयोग दिए, तो ये भगवान की शरण लिए, तो भगवान ने उन्हें मुक्त किया। अब आगे देखिए, एक भौमासुर नाम का बहुत बड़ा असुर था, जो पृथ्वी का पुत्र बोला जाता है, भौमासुर, जिन्होंने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया था, और यह सोचता था कि 20,000 जब राजकुमारियां हो जाएंगी तो हम इनके साथ विवाह करेंगे। भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, तो जो 16,100 कुमारियां थे, भगवान ने उनको मुक्त किया बंधन से, तो 16,100 जो राजकुमारियां थी, उन्होंने कहा कि हमको तो समाज ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि इस दुष्ट ने हम सबको बंदी बनाया था, हम लोग को समाज ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए आप तो पूरी जगत के पति हैं, आत्मा के वास्तविक पति तो आप ही हैं, हम आपकी शरण लेते हैं। तो 16,100 राजकुमारियों ने भगवान की शरण ली, ग्रहण के, और भगवान ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। ये सब आत्मभक्त के अंदर आते हैं, कहने का भाव यह है। तो गजराज उसमें मुख्य है, गजराज जो आर्त में है, जिसका प्राण संकट में है, वे भी भक्ति करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वे भगवान को पुकारते हैं, संकट हो चाहे जो भी हो, दुख मनुष्य पर छाता है तो भगवान उसे याद आते हैं। धन्य वे कुंती महारानी जिन्होंने अपने जीवन में भगवान से केवल दुख ही दुख मांगा, क्योंकि भगवान दुख में आते थे और भगवान का दर्शन करने से सारे दुख समाप्त हो जाते थे, क्योंकि भगवान परमानंद है, उनको देखने से ही दुख समाप्त हो जाता है। तो गजराज पूर्व जन्म में भक्ति किया था, भक्ति के प्रभाव से पशु जीवन में भी उसके भगवान की स्मृति आ गई। भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, पूर्व जन्म की भक्ति वर्तमान शरीर में भी काम करती है, जिससे गजेंद्र का काम किया। अभ्यास बहुत जरूरी है। मन चंचल है, चंचल मन को वश में करने के लिए भगवान दो उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग। अभ्यास न तो कौनती है वैराग न चिगृहते। अभ्यास करना चाहिए, किसी चीज को बार बार करने की प्रक्रिया का नाम है अभ्यास। अभ्यास से मति भगवान में लग जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभ्यास जन्म जन्म मुनि जतन करा है, जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं। जतन माने अभ्यास, जे मणि लागी सो जतन करा है। अंत राम कही, अंत में भगवान का नाम आ जाता है अभ्यास से। अंत राम कही, अंत में राम आ जाता है, हरे कृष्ण आ जाता है। आवत नहीं, इस संसार में नहीं आते हैं, वैकुंठ परमधाम चले जाते हैं। अभ्यास में हो सकती है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अभ्यास की बदौलत एक रस्सी भी पत्थर को काट देती है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात के सिल पर परत निशान। अभ्यास में इतनी शक्ति है। जो 16 माला जप है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जगने से लेकर सोने तक 16 माला का अभ्यास कर लेना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। अभ्यास से मति भगवान में लगती है। तो गजेंद्र ने अभ्यास किया था, अष्टोत्र का पाठ करता था, जिसको गजेंद्र अष्टोत्र कहा जाता है, और वही अष्टोत्र उसे उसके जीवन में काम में आए। तो विद्वान लोग कहते हैं कि ना पढ़े लिखे ना जप किए ना तप किए गजराज, एक फूल चढ़ाकर बुला लियो ब्रजराज। भगवान की भक्ति कहीं भी की जा सकती है। ये जल में है, देखिए जल में भी कर सकते हैं, थल में भी कर सकते हैं और नभ में भी कर सकते हैं। कहीं भी आप भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान आपकी पुकार को सुन लेंगे, सुनते हैं, क्योंकि भगवान जड़ नहीं है, भगवान चेतन है। जो चेतन को जड़ करेगी, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भज ही जीवते धन। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जड़ में भी चेतनता आ जाती है, जड़ भी हरे कृष्ण बोलने लगता है, जड़ वस्तु से भी आवाज आने लगती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम आप सभी जानते हैं, सभी लोग आप लोग कथा में श्रवण करते हैं। शरीर तो जड़ है, प्रभुपाद जी का शरीर से भी एक डॉक्टर अस्वस्थ थे, एक डॉक्टर आया, आला लगाया, यंत्र लगाया, कान में इसे सुना तो यंत्र में आवाज आ रही है, शरीर से प्रभुपाद जी के अंदर से ध्वनि से आवाज आ रही है, शरीर से नसों से आवाज आ रही है, क्या हरे कृष्णा हरे राम राम, नाड़ी से आवाज आ रही है। भगवान का नाम जड़ को भी चेतन बना देता। जाना भाई तो महाराष्ट्र में रहने वाली थी ना, जो थपेड़ी बनाती थी, थपेड़ी से भी आवाज आती थी हरे कृष्ण, बिठल बिठल की आवाज आती थी। भगवान चेतन को भी जड़ बना देंगे, जड़ को भी चेतन बना देंगे, इन शक्ति है। भगवान समर्थवान है, एक मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं और ऊपर से नीचे कर सकते हैं, बड़े बड़े अहंकारियों के गर्व को चपना चूर कर सकते हैं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करना है भगवान की एकदम बिल्कुल मुट्ठी में। अहंकारियों के अहंकार को खा जाते हैं, हिरण्यकश्यपु रावण देखिए कंस, ये सब बहुत बड़े अभिमानी राजा थे, सबको भगवान ने ठिकाने लगा दिया समाज में शांति व्यवस्था कायम किया। तो आर्त भक्त भगवान को पुकारते हैं, कहने का भगवान जैसे भी हो भगवान के शरण में जाना चाहिए। अब आगे चलें, आर्त इसके बाद में और आगे आर्तो चतुर्विधा आर्तो हाँ जिज्ञासु, जिज्ञासु भक्त हैं। जिज्ञासु किसे कहा जाता है ध्यान से सुनिए, धन स्त्री पुत्र गृह आदि वस्तुओं की ओर रोग संकट की परवाह न करके एकमात्र भगवान को तत्व से जानने की जिन्हें इच्छा है, एक निष्ठ भगवत भक्ति में निष्ठ होकर जो जिन्हें भगवान को जानने की इच्छा है और उसके लिए भगवान की भक्ति करते हैं, तो उन्हें जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। जो भगवान को जानने की इच्छा से एक निष्ठ होकर उनकी भक्ति करते हैं। अच्छा, तो जिज्ञासु भक्त में जैसे कौन कौन है? जैसे परीक्षित महाराज, उद्धव जी, ये सब जिज्ञासु भक्त हैं। परीक्षित महाराज यही प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी से अपने जीवन के अंत में, जब श्रृंगी ऋषि ने इन्हें अभिशाप दे दिया कि आज के सातवें दिन आपको तक्षक नाग दस देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सातवें दिन परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली है। राजपाट छोड़कर के सीधे मरणासन पर बैठ गए और यही श्रीपाल सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए। अतः पृछामि संसेदिम जोगी नाम परमम गुरु, हे जोगियों के परम गुरु, मैं आपसे जिज्ञासा करता हूं कि जो मनुष्य मरणासन है, मृत्यु के निकट है, यथाशीघ्र मरने वाला है, उसे किसका जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, कृपया बताएं, जिससे यथाशीघ्र उसकी मुक्ति हो सके। सुखदेव गोस्वामी ने यही बताया, जो मृत्यु के नजदीक है, मरणासन है, यथाशीघ्र मरने वाला है, उसे भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, उसे नारायण की स्मृति करनी चाहिए। आदि नारायण भगवान कृष्ण है, भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चंगुल से छूट जाता है। भगवान आपकी रक्षा करते हैं, नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता है। वो जो जन्म जैसे मानव शरीर मिला है, जो अंतिम शरीर है, ये अंतिम शरीर है, याद रखिए, भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ओ व्यति तत्वतः तैक्तवा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, जो मेरा स्मरण करता है वह शरीर को त्यागता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हम और आप कोई भी हो, यदि भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेंगे, फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपने भगवान को स्मरण किया, आपकी चेतना में शुद्धि है, आप भगवान को पकड़ लिए, चेतना में जागृति लानी है। चेतना यदि कृष्ण भावना से बिल्कुल भावित है तो हम निश्चित भगवधाम जाएंगे, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ज्ञानी हैं, उद्धव जी ज्ञानी हैं, और उद्धव जी भी यही कहे अंतिम समय में, जब भगवान का स्वधाम गमन जाने का समय आया, सभी असुरों का वध कर दिए और स्वधाम जाने लगे, तो उद्धव जी उनके पास में आए और उद्धव जी यही कहे कि प्रभु आप तो स्वधाम अपने धाम जाना चाहते, हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके बिना हम नहीं रह सकते। भगवान ने कहा उद्धव जी आप यही रह करके प्रचार प्रसार प्रचार कीजिए, तो उद्धव जी ने कहा कि हम कैसे रह सकते हैं, आपके जाने के बाद तो कलयुग आएगा, इसके लिए कुछ आधार चाहिए जो भक्तों का अवलंब हो। तो उसी समय भगवान कृष्ण अपने को श्रीमद् भागवत महापुराण में समाविष्ट करती है, श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए, और यही श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तों का आधार है, भक्तों का सबसे परम प्रिय ग्रंथ है वैष्णवों का, जिसको पान करके वैष्णव लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उद्धव जी भगवान की कथना अनुसार स्वधाम नहीं गए, यहीं रह गए, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, याद रखिए। जिज्ञासु जो केवल भगवान को जानना चाहते हैं, अब आगे देखें, अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी मतलब धन के लोभी, ऐसे भी भक्त होते हैं, चार प्रकार के भक्त होते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर में अर्थार्थी धन के लोभी होते हैं, स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा स्वर्ग इत्यादि लोगों के भोगने की जिनके मन में कामना रहती है, और उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वे भगवान के शरण में जाते हैं, इसके लिए वे भक्ति करते हैं, जैसे सुग्रीव, विभीषण,
ध्रुव
अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष कामा उदार थी त्रेण भक्ति जोगे न। ये लोग भी भगवान के शरण में गए, भगवान की भक्ति की। सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा बना दिया और विभीषण को भी भगवान ने लंका का राजा बना दिया। और ध्रुव जी अपनी विमाता के वचनों से बाधित होकर के वन में निकल गए और नारद जी के आदेशानुसार अष्टांग योग से अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगाते हैं और 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिए। भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक दिया, सबसे ऊंचा पद दिया, ब्रह्मा से भी ऊंचा पद दिया ध्रुव लोक। तो ये भगवान के शरण में गए, ये जितने भी भक्त हैं ये सब भगवान के ही शरण में जाते हैं। इनको धन का लोभ है, अगर धन भी चाहिए तो आप भगवान के पास जाइए, आप धनवान बन जाएंगे, निश्चित बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। सुदामा जी 4 मुट्ठी तंडुल लेकर भगवान के पास में गए, भगवान ने उन्हें धनवान बना दिया। कौन ऐसा व्यक्ति जो भगवान के पास गया हो किसी कोई कामना लेकर के और भगवान उसे न दिए हो, कोई ऐसा व्यक्ति है? जो भी गया है भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वे भगवान की शरण में जाते हैं, जो अल्पज्ञ होते हैं वे देवी देवता की शरण में जाते हैं। अब आगे देखिए, चौथे भक्त आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी के बारे में कहा जाए, प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं कि ज्ञानी उसको कहा जाता है जो वस्तुओं को सही रूप में जानने वाला हो और जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में केवल भगवान ही दिखाई देते हैं और भगवान के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है और जिनकी भौतिक कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे यथार्थ ज्ञानी हैं, वास्तविक ज्ञानी हैं। ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से भगवान की भक्ति करते हैं वे ज्ञानी हैं, निष्काम भक्ति के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जैसे सुखदेव जी, सनकादिगण, गोपियां, रामायण में आइए भरत लाल जी, हनुमान जी, ये सब निष्काम है, ये परम ज्ञानी हैं। जित देखो तित श्याममयी है, गोपियां जिधर देखती थी उधर उनको भगवान ही दिखते थे। हर वस्तु में, वाटन में, घाटन में, बिथिन में, बागन में, वृक्षण में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दारन दीवारन में, देहरी दरीचन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, वन में, जहां भी देखिए, जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई देते। शालिग्राम छाए रहो नैना और मन में, जहां भी वो दिखती थी उन्हें भगवान ही दिखते थे। रियल जो ज्ञानी है उस समय भगवान को देखता है क्योंकि उसकी भावना बिल्कुल अमृतमय हो गई है। आपको देखेगा आप में भगवान दिखेंगे क्योंकि यह शरीर जो है ना, ये जीवात्मा भी जब देखने की भगवान का अंश है तो उसको उसमें भगवान देखेंगे। देखने की देखिए सबकी भावना अलग अलग है, भगवान तो एक है लेकिन भावना, हमारे संस्था का नाम है श्री कृष्ण भावनामृत। अपनी भावना को अमृतमय बनाइए, मरी हुई भावना मत बनाइए। जिस समय भगवान श्री राम मिथिला में गए और जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए अखाड़े में, युद्ध के मैदान में, भिन्न भिन्न लोगों ने भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। भगवान तो एक है। कंस ने काल के रूप में देखा, मेरा काल आ गया, मुझे मार डालेगा, अब मुझे नहीं छोड़ेगा। माताओं ने शिशु के रूप में देखा, किसी ने मित्र के रूप में देखा, जिसकी जैसी भावना थी। और अन्य पहलवानों को बिल्कुल वज्र से भी अधिक कठोर दिख रहे थे, सल तो सल चरण मुष्टि को। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाके हृदय भगति जैसे प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा ते ही रीति। भगवान तो एक ही है, आप कौन सी चश्मा लगाए हैं, देखना चाहिए ना, दिव्य चक्षु चाहिए। भक्ति रूपी अंजन से हम भगवान को देख सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्त्या माम अभिजानत, आपकी भावना शुद्ध है तो आपको भगवान सब जगह दिखाई देंगे। सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम ज्योरी जोग पानी। पूरे जगत में भगवान दिखेंगे, जिधर आपकी दृष्टि जाएगी, पेड़ पशु पक्षी सब में आपको भगवान दिखेंगे, क्योंकि आपकी चेतना में शुद्धि है, भक्ति के प्रभाव से आपकी चेतना शुद्ध हो गई है। कांतेकनाथ जी गधे में भी भगवान को देखे थे, कहीं भी आप भगवान को देख सकते हैं। इसलिए हम लोग को अपनी चेतना में जागृति लानी है, चेतना की शुद्धि चाहिए, मरी हुई चेतना नहीं होनी चाहिए, भावना अमृतमय होनी चाहिए। अमृत में ही भावना को भक्ति का भक्ति के नाम से हम पुकारते हैं, श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, प्रभुपाद जी ने यही लिखा है, श्री कृष्ण भावना अमृत। आपकी भावना अमृतमय होनी चाहिए, मरी हुई भावना नहीं होनी चाहिए। आप किसी को माँ मानते हैं तो माँ मानिए, माँ की भावना रखिए, आपकी बुद्धि कभी भी भ्रमित नहीं होगी। और उसमें बिल्कुल दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपके संकल्प में दम होना चाहिए, नियम में परिपक्वता होनी चाहिए। जब नियम में ढिलाई हो जाती है तब हमारा और आपका पतन हो जाता है, परिपक्वता होनी चाहिए। ज्ञानी भक्त को सब जगह भगवान देखते हैं, सुखदेव जी परमहंस कहे माने जाते हैं, जिनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं, ये ब्रह्मवादी कहे जाते हैं, सब में भगवान को देखते हैं। इनका जन्म हुआ तो 16 वर्ष अपनी मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर चल पड़े। ये जोगी थे, ये गोलोक धाम के वासी थे, श्रीमती राधा रानी के लीला सुख थे। जब भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से पृथ्वी लोक में आए, ये भी उनकी कीर्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए इस भूलोक में आए, एक तोते के रूप में आए। तोता तोती होते ना, एक सुखी के गर्भ से जन्म ले, तोती के गर्भ से जन्म लिए। शिव जी अपनी पत्नी को जब कथा सुना रहे थे पूरी भागवत श्रवण की, तो शिव जी जब उनको मारने के लिए दौड़े, पीछा किए कि तुम पीछा से कथा श्रवण कर रहे हो, तुम पक्षी हो, जड़ हो, वो पक्षी उड़ा और सीधे बद्रिका आश्रम जाकर वेद व्यास जी की जो पत्नी थी धर्मपत्नी वटिका, भगवान की कृपा से उसको वासी आई, मुख से उसकी हवा निकले, इसे फैलाया और उसी मुख में प्रविष्ट कर गए सुखदेव जी, क्योंकि कथा सुन लेते अमर हो गए थे, शिव जी उन्हें नहीं मार सकते थे, वहां से लौट गए। वे सुखदेव जी जन्म लेते ही सीधे बन की ओर चले गए। आप सभी कथा को जानते हैं और सुने भी हैं कि दिव्यांगनाएं स्नान कर रहे थे, लेकिन इनको देखकर वो सब वस्त्र नहीं पहने, कभी तो परमहंस हैं, इनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ये तो सब में भगवान को देख रहे हैं। अब वेद व्यास जी गए तो सारी स्त्रियां साड़ी दिव्यांगनाएं साड़ी पहन ले अपनी, तो सुखदेव जी सब में भगवान को देख, परम ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानी थे सुखदेव जी, याद रखिए, धीर थे बिल्कुल, वृक्षों में प्रविष्ट होकर के वेद व्यास जी से बोले थे, जब पीछा किया ना, बेटा बेटा कहां जा रहे हो, रुको रुको, सुखदेव गोस्वामी वृक्ष में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि सिद्ध जोगी थे, अणिमा महिमा लघिमा सभी सिद्धियों को जानते थे, वृक्षों में प्रविष्ट होकर के बोले, आप इनका पीछा मत करिए, ये ब्रह्मवादी हैं, इनका साथ छोड़ दीजिए और आप यहीं से लौट जाइए। ऐसे सर्वभूत स्थित ज्ञानी श्री सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, सुध गोस्वामी ने प्रणाम करते हैं। तो ये ज्ञानी सुखदेव जी हैं, सनकादिक चारु कुमार देखिए ज्ञानी हैं, नारद जी ज्ञानी हैं, भीष्म पितामह जी और प्रहलाद जी भगवान को जानते हैं। ज्ञानी के मतलब एक मिथ्या ज्ञानी होते हैं, एक रियल ज्ञानी होते हैं, एक वास्तविक ज्ञानी, तो ये लोग वास्तविक ज्ञानी हैं। प्रहलाद जी का उदाहरण आता है, इनके ऊपर कितना संकट आया देखिए, हिरण्यकश्यपु ने बहुत सी संकटों से इनका सामना किया, लेकिन ये भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान के शरण में रहे और भगवान ने इनकी रक्षा की। तो प्रभुपाद व्याख्यान देते हैं कि चार प्रकार के भक्त होते हैं और चारों भगवान की आराधना करते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं, अर्थ तो कहते हैं कि जो संकट में हो, और अर्थार्थी जिन्हें धन की आवश्यकता हो, और जो ज्ञान की खोज में हो, और जो जिज्ञासु हो, जो भगवान को जानने की जिनकी इच्छा है, तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान इनका उद्धार करते, अपने पास बुला लेते हैं। कहने का भाव यह है कि हम लोग का जो जीवन है, जीवन के हम सभी के ऊपर मृत्यु रूप घड़ियाल सवार है। घड़ियाल की तुलना काल से है, याद रखिए, गजेंद्र है मतलब जी एक जीव और घड़ियाल मतलब काल, तो हम सबके ऊपर काल नाच रहा है। खलक चवैना काल की, कुछ मुख में कुछ गोद, कब किसको काल दबोच लेगा नहीं कहा जा सकता है। काल सबके ऊपर सवार है, इस संसार में पग पर खतरा है, पग पर खतरा है। गजेंद्र का परिवार गजेंद्र को नहीं बचा सका, ये शोचनीय बात है, भगवान ने उन्हें बचाया। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो हर एक व्यक्ति काल रूपी घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है, किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। काल सिर पर, काल को सिर पर सवार देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को हाथ में झोली माला लेकर जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम इस संसार में कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। ब्रह्मा का पास है, कर्म पास है, विधाता बांध कर ही, विधाता ने सबको जन्म मृत्यु के चक्र में बांध दिया है। रावण, हिरण्यकश्यप, ये अमरता का वरदान मांग करके भी मृत्यु से नहीं बच सके। कर्म की रस्सी बहुत बलवान है, उसको काट पाना बहुत मुश्किल है। कहते ना इतिहास में हिटलर और नेपोलियन का भी बड़ा नाता है। नेपोलियन जो फ्रांस का रहने वाला था, वह गर्व के साथ कहता था कि असंभव शब्द हमारे डिक्शनरी से निकाल दो, इस जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे मानव नहीं कर सकता है। लेकिन वो भी एक दिन दूसरे का अधीन बन करके बुरी तरह मारा गया। हिटलर भी मारा गया, हाँ, जेल में रहकर सड़कर वो मर गया। महात्मा गांधी को भी गोली से मरना पड़ा, कोई नहीं बच सकता। भगवान की आज्ञा सबके सिर पर दौड़ रही है, मृत्यु दौड़ रही है, किसी को कभी भी अपहरण कर सकती है। और ये भी याद रखें, महाराज जी कई बार उदाहरण देते हैं, राधा गोविंद महाराज जी कि अमेरिका की सत्य घटना उदाहरण देते हैं कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम कैनेडी था, जवाहरलाल नेहरू के साथ वे भारत में भ्रमण किए थे, घूमे थे, 200 सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ में थे और किसी ने सूचना दिया कि आपका जीवन खतरा में है और चेतावनी दी गई उनको कि आपको कल मार दिया जाएगा। 200 सिक्योरिटी जिनके साथ में है, अमेरिका के रहने वाले, सोचिए। लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को भी 200 सिक्योरिटी पहरेदारों के बीच में मार दिया गया, नहीं बच सके। काल को कोई, देखिए काल से कोई बच नहीं सकता है। और भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे कोई उसको मार नहीं सकता है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, बिल्कुल सत्य बात। और भी एक उदाहरण देते हैं महाराज जी, बहुत बढ़िया, कि एक बार मैं कह रहे हैं कि बहुत सुदृढ़ नौका रहने पर भी लोग समुद्र में डूब जाते हैं। एक बार इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाया गया, टाइटैनिक जहाज, उसमें सब वीआईपी लोग बैठे हुए थे, वीआईपी लोग थे, बहुत पैसे देकर के उसमें टिकट कराए थे, बैठे थे, बुकिंग कराए थे। लेकिन जब ही वह जहाज चला, आगे चल करके वह पानी में बुड़ गया, उसके यंत्र फेल हो गए और जितने लोग बैठे थे उस जहाज के अंदर सभी लोग जल में डूब करके मर गए। कोई शक्ति नहीं काम की, वैज्ञानिकों की कोई वहां शक्ति नहीं काम की। जहां दुनिया की शक्ति नहीं काम करती है प्यारे बंधु, वहां भगवान की शक्ति काम करती है। याद रखिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। सूरदास जी कहते हैं, अपबल तपबल बाहुबल, चौथे बल है दान, सूर किशोर कृपा ते सब, सूर किशोर कृपा ते सब हारे को हरिनाम। नाम के अलावा रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। गजेंद्र को भगवान का नाम रक्षा किया, द्रौपदी को भगवान ने रक्षा किया। तो जो चार प्रकार के भक्त हैं, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष भवन, तो चार प्रकार की जो पवित्र आत्मा है ये भगवान की शरण लेते हैं। तो हम सबके ऊपर मृत्यु सवार है, जैसे गजेंद्र ने भगवान की शरण ली, उसी प्रकार से हम सभी को भगवान का शरण लेना चाहिए। और याद रखें, मृत्यु तो सबकी होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिल्ली ऐसी होती है, बिल्ली जो चूहे को पकड़ती है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, एक ही मुख से पकड़ती है, याद रखिए, वो अपने बच्चों को भी पकड़ती है अपने मुख से, दांत से, और चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन उसकी पकड़ में अंतर है। अपने बच्चों को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह कर देती है, उसको कष्ट नहीं होता है, और वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे की जान ले लेती है। समझ रहे हैं, मरने को तो सब मरते हैं, साधु भी मरते हैं और असाधु भी मरते हैं, लेकिन जो साधु मरते हैं वो भगवान का नाम लेकर मरते हैं, उनको लेने के लिए बैकुंठ से विमान आता है और विमान पर सज धज कर चले जाते हैं, बैकुंठ चले जाते हैं, जहां से यद गतवान निवर्तन्ति तद धाम परम, लौटना नहीं पड़ता है, वहां जाकर जीव सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। अह जो भगवान का स्मरण नहीं करते हैं उनको जमदूत पकड़ करके ले जाते हैं और दंडित करते हैं, जैसे चूहे की बिल्ली खा जाती है, वैसे जो भगवान को स्मरण नहीं करते हैं उस प्राणी को जमदूत पकड़ के ले जाते हैं उसके सूक्ष्म शरीर के, और उसको दंडित करते हैं, करारी मार पड़ती है, फिर नरक में ठेल देते हैं, फिर जन्म जन्मांतर दुख भोगता रहता है। यदि हम जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज के प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि यह जीवन संकटमय है, संघर्ष से घिरा हुआ है, जैसे भी हो वहां भगवान को स्मरण करिए, और जो भक्त होते हैं कितना हो भारी संकट आ जाए भक्त भगवान की शरण में जाते हैं, देवता भगवान के भक्त होते हैं, जब जब उनके ऊपर संकट आता है तब तक भगवान को पुकारते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। असाधु नहीं जाते हैं लेकिन साधु जाते हैं। तो ये आज के प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है, और मुख्य रूप से ये बातें हैं कि अभ्यास करना चाहिए भक्ति जो का गजेंद्र की पूर्व जन्म की भक्ति इस वर्तमान जीवन में काम की, अभ्यास होना चाहिए। जट भरत जी को भी 3 जन्म लग गया, राजर्षि भरत, हिरण और जट भरत, भक्ति के प्रभाव से उनको स्मरण रहती थी कि हमको किस लिए हिरण का शरीर मिला, और अंत में तो कुछ बोले ही नहीं, जो बोला सो फंसा, सीधे भगवान का स्मरण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। 3 जन्म में प्राप्त किया, 1 जन्म में भी आदमी प्राप्त कर सकता है, केवल चेतना की शुद्धि। शुद्ध भक्त को ज्ञानी भक्त कहा गया है, याद रखिए, गोपियां सबसे बड़ी ज्ञानी थी, यथार्थ रियल ज्ञान है, और ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो जानते हैं कि भगवान कृष्ण समस्त वेदों के सार तत्व हैं, वासुदेव परावेदा, वेद के वास्तविक लक्ष्य भगवान को जानना, वे रियल ज्ञानी है जो कृष्ण को जानते हैं। हम सबको जैसे भी हो एन केन प्रकारेण नाम के माध्यम से भगवान के शरण में सदैव रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। धन्यवाद। हरि बोल। कोई प्रश्न है बोलिए। जी, उसका यंत्र फेल होगा बोला ना, अब मान ले ठीक है अगर आप विशेष जानते हो तो हो, लेकिन निष्कर्ष बोला कि मतलब वो जहाज फेल होगा जैसे भी हो, मतलब वो जहाज तो डूब गई ना, मेरा कहने का भाव है सिद्ध क्या करना चाहते हैं उस चीज को जानना चाहिए, मुख्य बात है कि आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं। माने वीआईपी लोग मर गए उनकी शक्ति कोई काम नहीं की, यहाँ ये बात कहा जा रहा है, भगवान हरेक जगह रक्षा करते हैं जो भगवान के शरण में आए हैं, शरण में जाते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, इस पॉइंट को हाईलाइट में करना। अब कैसे जहाज बुड़ गया क्या होगा, यंत्र फेल हो गया, बुड़ गया बहुत सी बातें हैं, पानी भर गया होगा, जो भी हो उसके तो बहुत से कारण है, अगर विशेष आप जानते हो तो व्याख्यान दे दीजिए, सब लोग सुन लें, माइक दीजिए उनको। जी हाँ, जैसे भी हो, या मछली से टकरा गया हो, हाँ नहीं वो भी नहीं, दीजिए ना उनको फोन दीजिए, सुन लीजिए आप लोग कैसे वो जहाज फेल हो गई, बताओ महाराज आप बताओ।
अंदर एक न दिखाई दे ऐसी हिमशिला थी, तो हिमशिला से उसका फ्रंट भाग टक्कर में आ गया तो चूर हो गया, आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, आइसबर्ग हिमशिला,
हाँ पत्थर पत्थर, हाँ बर्फ, हिमशिला माने बर्फ, बर्फ से टकराव हो गया।
तो ये मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट में यमदूत आते हैं और रस्सी से बांधते, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा।
जैसे भी हो, हिमशिला से टकरा जाए चाहे मछली से टकरा जाए, लेकिन जहाज तो गई ना, कहने का मतलब यह है, और उस बैठने वाले सब मर गए ना, कोई रक्षा नहीं कर सका, जहाज उनको नहीं रक्षा कर सके, कहने का भाव है। प्रभुपाद जी देखिए गए, पानी के जहाज से गए हैं, और कितना बार हार्ट अटैक आया, भगवान के शरण में थे, भगवान ने इनकी रक्षा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वे लोग भगवान की शरण नहीं लिए, अगर लिए होते तो भगवान उनकी भी रक्षा कर दिए होते। मैंने शरणागत होना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण।